وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيت زون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में जो कि एसेंशियली जो टाइटल है इस सिलसिले का वो तो है तीन एसेंशियल्स फॉर मेन, यानी मर्दों के लिए जो दीन की बुनियादी और ज़रूरी तरीन बातें हैं, तो उनको इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस करना होता है। तो इसमें आजकल जो हम सूरत की तफसीर पढ़ रहे हैं तो वो है सूरह मोमिनून, जो कि रमज़ान मुबारक में हमने शुरू करी थी। लेकिन रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया, हमसे रुख्सत हो गया, लेकिन सूरह मोमिनून की तफसीर हम मुकम्मल नहीं कर सके, तो इस वजह से इसमें हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक में मर्द और औरतें दोनों क्लास लेती थी, इन दोनों के लिए क्लास होती थी रमज़ान मुबारक वाली। तो इस वजह से जो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको सिर्फ मर्दों में, तो साथ साथ हम औरतों को भी इसका मैसेज भेज देते हैं, ताकि अगर उनके लिए मुमकिन हो, घर की जो भी मसरूफियात वगैरह हैं उनके साथ अगर उनके लिए मुमकिन हो तो वो भी इस क्लास को एज अ लिसनर अटेंड कर लें, वरना उनके लिए तो अलग क्लास होती है सुबह के वक्त, जिसके अंदर के दूसरी एक सूरह चल रही है, सूरह अंबिया। इसलिए कि मर्दों के लिए तो सॉर्ट ऑफ यानी तो मखसूस मर्दों के लिए है, दूसरा कुछ जो सिलसिले के मर्द हैं तो उनको फिर हमने मैंडेटरी भी इस क्लास उनके लिए कर दी है, ताकि वो भी इसको ज़रूर से अटेंड कर लिया करें। तो इस थोड़ी सी तमहीद के साथ हम सूरह मोमिनून की इन अगली आयात को पढ़ना शुरू करते हैं, जिनकी अभी तिलावत की गई, आयात नंबर 101 से 115 तक। मारफुल कुरान की जिल नंबर 6 से ही हम सूरत को पढ़ रहे हैं, और पिछली क्लास के अंदर आयत नंबर 100वीं आयत तक हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया था, तफसीर तर्जुमा खुलासा तफसीर वगैरह सब कुछ। तो हम आगे से शुरू करते हैं, इन आयत का पहले तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खुलासा तफसीर, और उसके बाद मारिफ मसाइल इंशाअल्लाह। तो पहली जो आयत है वो है जो अभी तिलावत की गई, फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़ला अन्साबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून, के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका तर्जुमा बनता है कि फिर जब सूर फूंकी जाएगी, फूंक मारेंगे सूर में, ठीक है, नुफिका का मतलब होता है फूंक मारना, ठीक, तो सूर के अंदर फूंक मारी जाएगी। तो सूर जो है ना, ये लफ्ज जो है ये तो फूंक के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी उस आवाज के लिए, उस सुर के लिए। लेकिन असल में ये जो लव्ज है, ये एक डिवाइस होती है, जिस तरह से लाउड स्पीकर, ठीक है, तो लाउड स्पीकर के अंदर बोला जाता है, तो फिर वो आवाज को जो है वो बड़ा करके दूसरी तरफ से निकालता है। आलय मुकब्बिरुल अस्वाद भी उसको कहते हैं, यानी आवाजों को बुलंद करने वाला आला, ये लाउड स्पीकर का अरबी तर्जुमा बनता है, आला मुकब्बिरुल अस्वाद, ठीक है। तो ये जो सुर है ना, ये भी यानी इस तरह की एक चीज होगी कि जिसके अंदर एक तरफ जो है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंक मारेंगे और दूसरी तरफ से जो है वो साउंड जो है वो मैग्निफाई होकर के निकलेगी। तो इस वजह से नुफिखा फिस्सूरी, सूर के अंदर फूंक मारी जाएगी जब, फला अंसाब बैनहुम, फिर क्या होगा, फा का तर्जुमा यानी उसके फौरन बाद, तो ला अंसाब, नहीं होंगे नसब, नसबी रिश्ते, अंसाब नसब का तर्जुमा, और नसब से मुराद जो है वो जो जो यहाँ पर यानी जो जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स होती हैं, नसबी रिश्ते जिनको उर्दू में कहा जाता है, तो बैनहुम इनके दरमियान, यानी कोई नस्बी रिश्ते इनके दरमियान बाकी नहीं रहेंगे। बाकी का मतलब क्या कि काम नहीं आएंगे, यानी बाकी तो रहेंगे भाई भाई, तो वहां पर भी भाई भाई रहेंगे, माँ बेटा बेटी सब कुछ वहां पर भी रहेंगे, लेकिन काम नहीं आएंगे एक दूसरे के। तो फला अंसाब बैनहुम यौम इज़न, उस दिन जिस दिन की सारी स्टोरी बयान हो रही है। अब ये जितनी आयात हैं इसके अंदर, इन सारी आयात में कयामत के दिन की रुदाद बयान हो रही है, तो यौम इज़न से मुराद उस दिन यानी कयामत का दिन। तो ना उनके दरमियान कोई नस्बी रिश्ते बाकी रहेंगे, वला यतसाअलून, और ना ये लोग आपस में एक दूसरे को पूछेंगे, आपस में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करेंगे, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक, जरा परेशानी तो नहीं हो रही आपको आज, नहीं, इस तरह की बातें जो है ना दुनिया में चलती हैं वहां पर नहीं चलेंगी। तो ये यतसाअलून का मतलब क्या, आपस में एक दूसरे से कोई पूछगछ, यानी ये वाली पूछगछ, हाल चाल वाली, ये उस दिन नहीं होगी। फिर क्या होगा, फिर मन सकूलत मवाजीनुहू, जो जिसका वजन भारी होगा, जिसका वजन भारी होगा, क्या मतलब, उसके मवाजीन यानी उसका जो बैलेंस होगा, उसका जो तराजू होगा ना, उसके अंदर जो उसका नेक आमाल का वजन होगा, ठीक है, मवाजीन मीजान की जमा है, और मीजान जो है वो तराजू को कहते हैं, और तराजू के दोनों पलड़े, ठीक है ना, एक पलड़ा जो है वो नेक अमाल का, दूसरा पलड़ा जो है वो बुरे अमाल का। तो अब यहाँ पर मवाजीन से मुराद क्या ली जा रही है, यहाँ पर नेक अमाल वाला पलड़ा मुराद लिया जा रहा है, कि वो भारी होगा जिसका भी, फउलाइकहुमुल मुफ्लिहून, बस वो लोग ही फलाह पाने वालों में से होंगे, यानी वो ही फलाह पाने वाले होंगे, अल मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले यानी कामयाब, सक्सेसफुल, जिनका के तराजू का, नेकियों का पलड़ा भारी होगा, जिसका भी मन सकुलत, ये मन जो है ना ये आम है, कि जिसका भी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा। वमन खफत मवाजीन हो, और जो भी खफत मवाजीन हो उसका पलड़ा नेकियों वाला, खफत खफीफ होगा, हल्का निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, फउलाइका, पस वो, अल्लजीना खसरू, वो जो के खसारे में, नुकसान में हुआ, अल्लजीना खसरू अनफुसहुम, वो जिसने के अपने नफ्स का नुकसान कर दिया, ठीक है ना, जिसने के अपने नफ्स को खराब कर दिया, खसारे में कर दिया, नुकसान कर दिया, लॉस कर दिया, जिसने, फी जहन्नम खालिदून, जहन्नुम के अंदर होगा खालिदून, खालिद, खालिद साहब का मतलब क्या होता है, अक्सर लोगों के नाम खालिद होते हैं हमारे यहाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े सहाबी भी, तो खालिद का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, तो खालिदून हमेशा रहने वाले, ठीक है, तो जिसका भी पलड़ा वो हल्का होगा तो वो जहन्नुम के अंदर हमेशा रहने वाला होगा, क्योंकि उसने अपने नफ्स का खसारा कर दिया है, ठीक है, खराब, नुकसान, लॉस, वुजूहहुम नारू, तलफहू यानी झुलस देगी उसके उनके चेहरों को, अन्नार वो जहन्नम की आग, उनके चेहरों को झुलस देगी। तलफहू का मतलब झुलस देना। वहुम फीहा कालिहून, और वो होंगे उसके अंदर यानी जहन्नम की आग के अंदर। ये फीहा में जो हा प्रोनाउन है ये अन्नार की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो जहन्नम की आग जो है ना वो इसके अंदर होंगे और कालिहून होंगे। कालिहून का मतलब के बदशकल, जिसका के जिसके चेहरा जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म का उसका चेहरा होता है। आगे तफसीर के अंदर इसकी कुछ तफसील भी है कि जैसे दांत नजर आ रहे हैं और होंठ जो है वो ऐसे हुए हुए हैं और अजीब व गरीब किस्म के गंदी सी शक्ल बन चुकी होगी इनकी। अब उनसे सवाल या उनसे जो खिताब किया जा रहा है, आ लम तकुन आयाती, क्या आ जो है वो हमजा इस्तेफामिया है जिसका तर्जुमा क्या से करते हैं। लम तकुन नहीं थी आयाती, मेरी आयात, ठीक है, नहीं थी मेरी आयात तुतला अलैकुम, तिलावत की जाती तुम्हारे ऊपर। तुतला, ठीक है, ये वो तुतलाने वाला उर्दू वाला तुतला नहीं बल्कि तला यत्रु तिलावतन, ठीक है, कि तिलावत की जाती तुम्हारे ऊपर। क्या मेरी आयात तुम्हारे ऊपर तिलावत नहीं की जाती थी, तुम्हें पढ़ करके नहीं सुनाई जाती थी। हमारे सामने तिलावत हो तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तो हमसे उस दिन ये सवाल होगा तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी, अल्लाह के ए अल्लाह हमें तो अरबी नहीं आती थी तो हम तिलावत जो है वो सुन करके कैसे समझते, ठीक है ना। तो अब उसके ऊपर ये सवाल नहीं तुमने अरबी सीखी क्यों नहीं, नहीं, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो ऐसा नहीं होता जो कि अरबी जुबान फुसा अरबी सीख सके, ठीक है। तो इस वजह से हमारे लिए तुतला अलैकुम आयाती का मतलब क्या है कि आयात का मफहूम हमें बताया जाता है, हमें बयानात के अंदर, उर्दू जुबान के अंदर, पंजाबी जुबान के अंदर, सिंधी जुबान के अंदर, पश्तो जुबान के अंदर हमें आयात का मफहूम समझाया जा रहा होता है। तो हमसे इसका सवाल होगा क्योंकि वो तो तुम्हारी अपनी जुबान थी ना, तुम अरबी जुबान का बहाना नहीं कर सकते। वैसे तो हो सकता है जिन्होंने फ्रांसीसी सीखी हुई हो और अंग्रेजी सीखी हुई हो, जर्मन सीखी हुई हो, तो उनसे फिर ये कहा जा सकता है कि भाई तुमने जर्मन और फ्रांसीसी तो सीख ली थी, अरबी रह गई तुम्हारी सीखने के लिए, ठीक है। लेकिन वैसे एक आम आदमी जो होता है जो कि गांव देहात का और अपने मशगले के अंदर काम काज से उसको फुर्सत नहीं है, तो उससे अरबी जुबान की डिमांड नहीं है, सिवाय इसके कि नमाज में पढ़ने वाली अरबी उसको आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो भाई उर्दू में तो सिखाई जाती है, समझाई जाती है ना तुम्हें आयात, तो क्या मेरी आयात तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थी। फकुन फकुन तुम बिहा तुकद्दिबून, बस तुम जो है ना उसको झुटलाते थे, ठीक है, उन आयात को तुम चाहे जुबान से झुटलाते थे या अपने अमल से झुटलाते थे, जैसे भी करते थे तुम उनको झुटला देते थे, उनको रिजेक्ट कर देते थे। कालू, वो लोग कहेंगे इस सवाल के जवाब में, ये सवाल हो रहा है ना, हमजा इस्तेफामिया सवालिया से सवाल हो रहा है, तो अब उसके ऊपर जवाब नकल फरमा रहे हैं। कालू, वो कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, गलबत अलैना शिकवतुना, हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी। शिकवतुना, शकी, शकी कहते हैं ना बदबख्त को जिसकी किस्मत ही खराब हो गई हो। कमबख्ती, कमबख्ती जो है वो मतलब यहाँ पर बदबख्ती है, वरना कमबख्ती नहीं, बदबख्ती है असल में यहाँ पर मुराद, क्योंकि कमबख्ती तो उसको कहते हैं कि जिसका बख्त थोड़ा सा यानी खुशबख्ती भी थोड़ी सी मिल गई हो उसको, लेकिन ज्यादा बदबख्ती मिली हो, थोड़ी सी खुशबख्ती मिली हो। लेकिन काफिर का क्या मामला होता है, काफिर के पास तो खुशबख्ती नाम की कोई चीज ही नहीं होती, वो तो खालिसतन 100% बदबख्ती। तो इस वजह से यहाँ पर कमबख्ती का लफ्ज जो लिखा हुआ है वो मुहावरतन लिखा हुआ है, खाली मानी यहाँ पर बदबख्ती ही है, ठीक है। तो हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई थी। वकुन्ना कौमन वालीन, और हम हो गए एक ऐसी कौम जो के गुमराही के रास्ते के ऊपर चल पड़े, यानी जो रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए था हम उस रास्ते को गुम करके किसी दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। वालीन का क्या मतलब के बहक गए सीधे रास्ते से, ठीक है। हमें तो बुलाया जा रहा था सीधे रास्ते के ऊपर, हमारे सामने सीधा रास्ता नजर भी आ रहा था, लेकिन बदबख्ती गालिब आ जाती है, नहीं समझ लगती फिर उसके बाद, तो छोड़ देते हैं और इधर उधर के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो यही हमने भी कर लिया। ए हमारे रब, उस वक्त रब याद आएगा, दुनिया में रब को नहीं पुकारते थे, वहां पे जाकर के रब को पुकारेंगे, रब बना है ए हमारे रब, ईमान वाले इस दुनिया के अंदर रब बना, ज़लमना अनफुसना है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। दुनिया ईमान वाले जो है वो दुनिया के अंदर रब्बना करते हैं, और जो इनकार करने वाले होते हैं वो दुनिया में नहीं करते, वहां जाके करेंगे। ये नहीं है कि वहां भी नहीं करेंगे, वहां पे जाकर के करना पड़ेगा। आसानी तो यही है ना कि भाई इसी दुनिया में कर लें, रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने, हमारे परवरदिगार हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया। रब्बना, फिर कहेंगे ए हमारे रब, अखरिजना मिन्हा, हमें निकाल दीजिए इस जहन्नुम की आग में से, फ इन उदना, बस अगर हमें लौटा दिया गया, अगर हमें लौटा दिया गया, फ इन्ना यानी सॉरी, अगर हमें लौटा नहीं दिया, अगर अगर हम फिर से ये हरकत करें, यानी अगर हम यानी इस जहन्नुम की आग से आपने हमें निकाल दिया और फिर हम वही हरकत करें ना, फइन्ना ज़ालिमून, फिर तो हम जुल्म करने वाले होंगे, फिर तो हम ज़ालिमून में से होंगे, यानी हम जालिम होंगे। ठीक है, तो पहले जो किया उसके ऊपर नहीं, बल्कि अब जो है ना, अब नेक्स्ट टाइम, सेकंड चांस में अगर हम वही वाली हरकत करें जो कि हमने पहली दफा में करी थी, तब हम जालिम होंगे। ठीक है ना, वही बात जो ईमान वाले दुनिया के अंदर कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है। ईमान वालों का क्या एटीट्यूड होता है कि वो दुनिया की जिंदगी के अंदर अपने आप को जालिम कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, राइट, दुनिया की जिंदगी में अपने आप को गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने कहते हैं। ये नहीं कि दुनिया के वालों के सामने तमाशे तमाशे कर रहे हैं, हम तो बड़े गुनाहगार हैं जी, हम तो बड़े गुनाहगार हैं जी, नहीं, दुनिया वालों के सामने तमाशे करने की कोई हैसियत नहीं है, परवरदिगार के सामने रब्बना ज़लमना अनफुसना। ठीक है, तो ये ईमान वालों का एटीट्यूड क्या है कि इसी दुनिया की पहली वाली जिंदगी में ही जो है ना, फर्स्ट जिंदगी जो एक ही जिंदगी है, उसी के अंदर रब्बना ज़लमना अनफुसना, और काफिर का एटीट्यूड क्या है कि वो इस वाले को तो मानने से इनकार कर देगा और फिर कहेगा कि दूसरी दफा में अगर हमने किया ना, तब हम जालिम होंगे। तो एटीट्यूड का फर्क होता है, और इट्स द एटीट्यूड दैट काउंट्स। हमने जब पहली दफा ग्रेजुएशन के बाद जॉब करी ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आए, तो वहां पर जो है ना, ये बात बहुत ज्यादा सुनने को मिलती थी, और हकीकत भी यही थी कि कहते थे इट्स द एटीट्यूड दैट काउंट्स। ठीक है, इट्स द एटीट्यूड, यानी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई होता है ना, जो कि वर्क प्लेस के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, स्पेशली व्हाइट कॉलर वर्कर्स में ये बात ज्यादा समझी जाती है, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं या जो मेहनत मजदूरी मुशक्कत वाले जो लोग होते हैं, उनके इन सब बातों की कोई तवज्जो होती भी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है ना, ये बात बड़ी काउंट होती है। ठीक है, कि एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, तब बंदा चल पड़ेगा। ठीक है ना, पीपल शुड बी विलिंग टू वर्क विद हिम, ही शुड बी विलिंग टू वर्क विद अदर पीपल, एक ये कोई मुसीबत ना हो दूसरों के लिए ना, टीम वर्क के अंदर ही शुड बी अ गुड टीम प्लेयर। तो एटीट्यूड जो है ना, वो असल चीज होती है। बाकी कितना जीपीए लेकर के आया है, कितना इस ये मैथमेटिक्स के अंदर चीता है, या कितना जो है ना वो साइंस के अंदर चीता है, कितना इसको बोलना आता है, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो थोड़े दिन की बात होती हैं, थोड़े दिन के बाद ये सारा का सारा ठप हो जाता है ना। और जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है वो चल पड़ता है, जिसका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता ना, उसको कितना ही अच्छा जीपीए लेकर के आए, कितना ही अच्छा जो है वो वर्बल स्किल्स लेकर के आए, कितना ही अच्छा जो है वो दूसरे के स्किल्स लेकर के आए, वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो एटीट्यूड तो असल चीज होती है ना, इवन दुनिया वाले इस बात को समझते हैं। तो यही एटीट्यूड जो है ना, वो आखिरत के अंदर भी, अब दुनिया के अंदर भी, यानी दीन के अंदर भी एटीट्यूड ही होता है असल चीज। ठीक है, दीन में भी ये जीपीए काउंट नहीं होती, ठीक है ना, वो थोड़े दिन की बात होती है, पर सब ठप हो जाता है उसके बाद। तो इनका एटीट्यूड जो है ना, वो ऐसा होगा कि वहां पहुंच करके फिर उसके बाद वहां पर भी जो है ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे अगर हमने किया तब हम जालिम होंगे, ये नहीं कि हमने अपने ऊपर। अच्छा, قَالَخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ, लेकिन इनको इस ये जो इनके जो एक्सक्यूजेज होंगे और ये जो इनके उस वक्त के वादे होंगे ना, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जवाब क्या दिया जाएगा, काला के इख्सऊ फीहा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा, और ये जवाब जो है ना वो इंतहाई खतरनाक तरीन जवाब है, खौफनाक तरीन, यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब है। इख्सऊ फीहा, तुम जो है ना वो फटकारे हुए पड़े रहो उसके अंदर, जहन्नम की आग के अंदर। वला तुकल्लिमू, और बात ना करो तुम मुझसे। वला तुकल्लिमूनी, ये नून के नीचे जो जेर है ये क्या है, याए मुतकल्लिम है, यानी कहने वाले ये कहेंगे, और कौन कहने वाला होगा उस वक्त, उस वक्त फरिश्ते तो नहीं बात कर रहे होंगे ये वाली, राइट। ये लोग तो रब्बना अल्लाह से बात कर रहे थे ना, अल्लाह को पुकार रहे थे ना, अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं इन लोगों को, ला तुकल्लिमूनी, तुम मुझसे बात भी ना करो, अल्लाह पर कबीरा, है ना। अल्लाह ताला से जो मोहब्बत है ना, ये काफिर के अंदर भी होती है, काफिर के अंदर भी अल्लाह से मोहब्बत, पता है हम पढ़ चुके हैं सीरत तफसीर क्लास के अंदर पहले भी, अल्लाह से मोहब्बत तो काफिर के अंदर भी होती है, ठीक है। इस दुनिया के अंदर उसकी गलती ये होती है कि वो इस मोहब्बत को जो है ना वो छुपा देता है, मिट्टी डाल देता है उसके ऊपर, उसको जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात में दबा देता है उस मोहब्बत को, लेकिन अंदर उसकी मोहब्बत जो है ना अल्लाह ताला की अंदर मौजूद होती है, इसने उसके ऊपर जो है वो अपने गुनाहों की राख डाल दी होती है, मिट्टी डाल दी होती है, उसको दबा दिया है उसका उसको, ठीक है। अब कयामत के दिन जो है ना, ये जो है ना ये मोहब्बत कयामत के दिन भी मौजूद रहेगी उसकी, और ये उस दिन जो है ना जबकि इसके चारों तरफ ये सारे सिलसिले चल रहे होंगे कि अल्लाह ताला की एंट्री हो जाएगी, राइट। अल्लाह ताला जो है वो नुजूल फरमाएंगे मैदान हशर के ऊपर, बादल के पीछे से आवाज आ रही होगी, ये सब कुछ सिलसिला चल रहा होगा। उस दिन ये काफिर अल्लाह ताला को मोहब्बत की वजह से, अपनी उस मोहब्बत की वजह से ये अल्लाह ताला को देखना भी चाहेगा, और ये अल्लाह ताला से बात भी करना चाहेगा, जैसे हर मुहिब अपने महबूब को देखना भी चाहता है और अपने महबूब से बात भी करना चाहता है। ईमान वाले भी बात करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, काफिर भी बात करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, चाहेंगे दोनों, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मामला दोनों के साथ मुख्तलिफ होगा। काफिर के और अल्लाह के दरमियान एक हिजाब बन जाएगा, और ये चाहत के बावजूद अपने महबूब को नहीं देख सकेंगे। और उसी तरीके से जब ये अपनी तरफ से कलाम करेंगे और अल्लाह की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तमन्ना करेंगे, अल्लाह की तरफ से इनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और कह दिया जाएगा मत करो तुम मुझसे बात, राइट। अब क्या हशर हो उस शख्स का, उस मुहिब का, उस लवर का क्या हशर होगा, जब उसका बिलवर्ड उसको ऐसे कह दे तुम मुझसे बात भी ना करो। जिन्होंने इस दुनिया के अंदर नफसानी शहवानी मोहब्बतें करी हैं, उनको अच्छी तरीके से इस बात का अंदाजा है, जिसके साथ उन्होंने अपने दिल को लगाया और उसने अगर आगे से बोल दिया ना मुझसे तो तुम बात भी ना करो, और हकीकत में बोल दिया, ऐसे नहीं कि बस ऐसे इतराने के लिए और चढ़ाने के लिए बोल दिया और हकीकत में तो बात करने का मूड है लेकिन उस वक्त नहीं, बस नहीं, हकीकत में गुस्से में ऐसा नहीं बात करो मुझसे, मैं तो बात भी नहीं करना चाहती, फिर जो उसका दिल टूटता है ना। तो दुनिया के अंदर भी कुछ लोगों को इसका तजुर्बा हुआ होगा। कयामत के दिन तो महबूब हकीकी है ना, दुनिया में तो सारे मजाजी महबूब होते हैं और झूठे महबूब होते हैं ना, वहां पर तो महबूब हकीकी की तरफ से ये जवाब मिल जाएगा, ला तुकल्लिमूनी इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी। और ये जवाब क्यों मिलेगा भाई, मोहब्बत करने वाले हैं है ना भाई, ये जो काफिर है ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ठीक है। अच्छा, ये अल्लाह के बंदे हैं और ये बहुत छोटे हैं, अल्लाह की जो शान है, अल्लाह की जो अजमत है, अल्लाह की जो बड़ाई है, अल्लाह की जो कुदरत है, उनके सामने एक इंसान की कोई हैसियत है, कोई हैसियत है इंसान की, ठीक है ना भाई। जिस तरह
इंसान की कोई हैसियत नहीं है, उसी तरह इंसान के अमल की भी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में। राइट भाई, जितना छोटा बंदा उतना छोटा उसका अमल, छोटे बच्चे का अमल छोटा, बड़े इंसान का अमल बड़ा, ठीक है ना। तो अल्लाह के मुकाबले में काफिर क्या है भाई, है ना, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। काफिर तो क्या, मोमिन भी पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, कोई हैसियत ही नहीं हमारी, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह का क्या चाहता है कि काफिर को भी माफ कर दें, है ना भाई। बेवकूफ था बेचारे ने, जिद कर ली और बात नहीं समझ सका या जो भी किया इसने, ठीक है। अल्लाह तो रहीम है, करीम है, सब कुछ अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला के बस में तो कुछ कोई कमी नहीं, अल्लाह ताला के कोई जन्नत की के अंदर कोई क्या वैकेंसीज कम हो जाएंगी, कोई क्या नहीं, कोई जगह कम हो जाएगी, कोई प्लॉटिंग कम हो जाएगी वहां पर, राइट। कि जी काफिर जो है वो उनके लिए जगह नहीं है असल में, इस वजह से जो है ना उनको जहन्नुम में डालना जरूरी है ना भाई। अगर काफिरों को माफ कर दिया तो जन्नत में जो है ना वो जगह खत्म हो जाएगी, अल्लाह की रहमत में जो है थोड़ी सी नाउज बिल्ला कमी हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, ठीक है ना। बजटिंग जो है वो खराब हो जाएगी अल्लाह की नेमतों की, इस वजह से काफिर को माफ नहीं करते और काफिर को जहन्नुम में भेज देते हैं। भाई सोचने की बात है ना कि भाई ठीक है, आप जरा इंसानों के दरमियान तो चलो जी, इसने गंदा काम किया, उसने अच्छा काम किया तो गंदे काम करने वाले को जो है वो सजा मिल गई, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो गंदा काम करने वालों को छोड़ दिया जाएगा तो दुनिया के अंदर जो है वो लॉलेसनेस फैल जाएगी, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी और जो है वो खराबी हो जाएगी। तो इस वजह से जो जो गंदा काम करने वाले लोग होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको सजा दी जाती है ना भाई। तो दुनिया में तो लॉलेसनेस का खतरा होता है ना, ठीक है ना। इस वजह से गलत काम करने वालों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। आप उनको यानी ऐसी जो है क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो माफी अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है ना उसके लिए, आम माफी का ऐलान नहीं कर देते, ठीक है। क्या होता है सैंक, क्या क्या लफ्ज था, खैर। तो इस वजह से दुनिया में नहीं करते, है ना भाई। अल्लाह ताला की जन्नत में कौन सी लॉलेसनेस, अल्लाह ताला की जन्नत में कौन सा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होने वाली है, तो फिर काफिर को क्यों नहीं माफ करते, ठीक है ना। ये सवाल जो है ये एक सोचने वाले के जहन में आ सकता है, बल्कि आता है, ठीक है ना। तो इस सवाल को एड्रेस करना, क्यों, कैसे एड्रेस करेंगे। हाँ वो एस से भी कोई लफ्ज होता है पार्डन के अलावा, खैर। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं माफ करते, ठीक है ना। हालांकि अल्लाह ताला की क्या बिगड़ रहा है माफ करने में, एमनेस्टी, ठीक है, जहां भी शायद यही था मेरे। तो क्यों नहीं माफ करते, आगे इसका जवाब आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर इस आयत में इसका जवाब है, इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी, बेशक थे एक फरीक मेरे बंदों में से, एक ग्रोह मेरे बंदों में से, ठीक है ना। यानी बेसिकली काफिर का एक ग्रोह हो गया और दूसरे ग्रोह, ग्रोह की बात हो रही है ईमान वाले, मेरे बंदों में से एक ग्रोह था, यकूलून वो कहते थे, रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम ईमान लेकर के आए, ठीक है ना, हम ईमान लेकर के आए। किस पर ईमान लेकर के आए, आपके नबी पर ईमान लेकर के आए, ठीक है, आपके नबी के ऊपर ईमान लेकर के आए। फ़ग़फ़िर लना, और फिर ईमान लाने के बाद इतराते नहीं है बल्कि उल्टा और माफी मांग रहे होते हैं अल्लाह ताला से, है ना। तो मेरे बंदों में एक ग्रोह था जो कि ईमान भी लेकर के आता था और फिर उसके बाद वो माफियां भी मांगता रहता था और कहता था, वरहमना, आप हमें माफ कर दीजिए और हमारे ऊपर रहम कीजिए, वो अंत खैरुर राहिमीन, और आप तो तमाम रहम करने वालों में से सबसे अच्छे रहम करने वाले हैं, ठीक है। फतखज़्तुमूहुम सिखरिया, बस तुम लोगों ने जो है ना उन लोगों को जोक बना करके रखा हुआ था, उनका मजाक उड़ाते थे तुम लोग, ठीक है। तो माफ क्यों नहीं करेंगे, काफिरों को माफ क्यों नहीं करेंगे, हालांकि अल्लाह ताला की जन्नत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला की कुदरत के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि ये ईमान वालों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी। ईमान वालों का हक क्या था कि भाई उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपना एटीट्यूड जो है ना वो बंदगी वाला बनाया था, तो अगर उनको जो मिल रहा है इनको भी उतना ही मिल जाए तो ये तो इंसाफ ना हुआ ना, ठीक है ना। ये तो उनके साथ ज्यादती हो गई ना कि जिन्होंने जिंदगी जो है वो कुर्बानियां दे दे करके गुजारी और तकवा इख्तियार करके जिन्होंने जिंदगी गुजारी और उनको सारे के सारे जो आपने वादे किए हुए थे, तो गोया कि ये वादे जो है वो सच्चे ना निकले, है ना, कि भाई दुनिया में तो उनको ये कहा हुआ था कि मानोगे तो बचोगे, नहीं मानोगे तो मरोगे, और वहां पे पता वहां पे पहुंचे तो पता चला कि जो नहीं मानने थे, मानने वाले थे, वो भी बच गए, ठीक है ना। तो ये तो वादा खिलाफी हो गई, है ना, इनके साथ बेइंसाफी हो गई। तो अल्लाह ताला जो है ना अपने वादे को पूरा करेंगे काफिरों के मामले के अंदर, कि उनको फिर जो उनके साथ वादा किया गया है उस वादे को पूरा करेंगे, और अपने ईमान वाले मानने वाले बंदों के साथ जो है ना वो अल्लाह ताला वादा खिलाफी भी नहीं करेंगे, बेइंसाफी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे कहेंगे उन लोगों को, काफिरों को, कि तुम लोगों ने इन ईमान वालों को, इन बख्शिश मांगने वालों को, तुमने इनका तुम मजाक उड़ाते थे, हत्ता अंसौकुम जिक्री, हत्ता के हत्ता के अंसौकुम जिक्री, यानी यानी अंसा युनसी का मतलब तो वो नसिया यंसा, ठीक है, अंसा युनसी, भुला दिया तुमको मेरी याद, यानी ये तुम्हारी जो हरकतें थी ना जो कि उनके साथ तुम करते थे, तुम्हारी इन हरकतों ने भुला दिया तुम्हें मेरी याद, मुझे याद करना तुम भूल गए। वकुन तुम मिनहुम तضحकून, इस हाल में कि तुम उनके ऊपर जो है वो हंसते रहते थे, रहा का यضحकू हंसना, ठीक है, इस हाल में, यानी यहाँ पर वाव जो है वो हाल बयान कर रहा है कि तुम्हारा जो ये हाल था ना कि तुम उनके ऊपर हंसते रहते थे, तो तुम इसी मशगले में रहे और इस मशगले की वजह से जो है ना वो तुम मुझे भूल गए कि मेरे पास भी तुम्हें आना है, मैंने तुम्हें नेमतें दे करके पैदा किया है, तो मेरे रसूल की बात तुमने माननी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो तुम्हें तुम्हारे जोक अराउंड करने की जो आदत थी ना, लाइट लेने की आदत जो थी ना, उसने इन सारी चीजों को तुम्हें भुला दिया। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू, तो मैंने आज के दिन उनको बदला दिया है, बिमा सबरू, जो उन्होंने इस्तेकामत के साथ ईमान पकड़ा रखा और अपनी जो मगफिरत मांगने की आदत थी, रहम तलब करने की आदत थी, इसके ऊपर वो डटे रहे, तो इसके सबब जो है ना वो हमने उनको आज के दिन जजा दी है, ठीक है। अन्नहुम हुमुल फायजून, बेशक वही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं, फाइजून, ठीक है, यानी कामयाब होने वाले हैं और अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले लोग हैं, यानी तुम लोग नहीं हो बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने के सबर और इस्तकामत के साथ ईमान के ऊपर जमे रहे। काला, फिर कहा जाएगा, यानी फिर वो उसने कहा, यानी जो बात हो रही है उस बात करने वाले ने कहा, कम लबिस तुम फिल अर्थ, कितना रहे तुम जमीन के अंदर, अदद सिनीन, सालों के एतबार से, सालों के अदद, यानी कितने साल रहे तुम जमीन के अंदर, ठीक है। तो वो लोग जवाब देंगे, कालू दे सेट, उन्होंने कहा, यानी ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए जो है ना वो माजी का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट टेंस इस्तेमाल हो रहा है, तो पास्ट टेंस फ्यूचर के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि पास्ट टेंस तो खाली अरबी में नहीं होता, अरबी के अंदर फ्यूचर टेंस भी होता है, यानी जिसको कि फेले मुबारे कहते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए, तो मुजारे का टेंस क्यों नहीं इस्तेमाल होता, हालांकि ये तो फ्यूचर की बात है, पास्ट टेंस क्यों इस्तेमाल हो रहा है इन सारी की सारी डिस्कशंस के अंदर, क्योंकि पास्ट टेंस जो है ना वो बात को ज्यादा मुहक्कक कर देता है, हो गया, हालांकि अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, लेकिन ये इतना यकीनी बात है, एज इफ इट इज डन, ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है ना, क्योंकि पास्ट के अंदर सर्टेनिटी होती है, फ्यूचर में सर्टेनिटी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से फ्यूचर के जो वाकयात हैं वो भी कुरान मजीद के अंदर पास्ट टेंस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, बताए जाते हैं, जैसे कभी अंग्रेजी जुबान के अंदर भी कहते हैं ना कि जी आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा, ठीक है, तो अब वो बंदा जो बड़ा एफिशिएंट किस्म का आपका वर्कर है, आपने उसको काम लगाया ना, तो वो आगे से जवाब देता है, बॉस कंसिडर इट डन, राइट, कंसिडर इट डन, यानी समझे कि हो गया, हालांकि अभी हुआ कोई थोड़ी है, लेकिन वो आपको यकीन दिला रहा है कि नहीं जी हो जाएगा, ठीक है ना, आप समझे कि हो गया, ठीक है। तो वो हो गया क्या है, पास्ट टेंस है ना, तो क्यों बोल रहा है हो गया, क्योंकि सर्टेंटी बताने के लिए, आपको बिल्कुल इत्मीनान देने के लिए, आप फिक्र ही ना करें बिल्कुल कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं जी मैं जरूर से करूंगा। अल्लाह ताला भी अरबी जुबान के अंदर भी यही मुहावरा इस्तेमाल होता है कि माजी का सीगा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सारा माजी चल रहा है। आलू, वो बोले, लबिसना यौमन, हम तो रहे, यानी जमीन के अंदर रहने की बात हो रही है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, एक दिन, यौमन एक दिन, औ बअज़ यौमिन, या एक दिन का भी बाज हिस्सा, पार्ट ऑफ ए डे, ठीक है ना, अ डे और पार्ट ऑफ ए डे, फसअलिल आदीन, तो पूछ लीजिए गिनती करने वालों से, आदीन का मतलब अदद करने वाले, काउंट करने वाले, काउंटर्स, ठीक है, तो आप जो है वो पूछ लीजिए, फसअल यमन यानी पस सवाल कर लो, पूछ लो आदीन से, ठीक है, इसकी तफसीर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आला, तो फिर अब इनको जवाब दिया जाएगा, इस तरह से कुरान मजीद में ना कॉन्वर्सेशन, बस काला कालू काला कालू या काला काला, इस तरीके से अब पढ़ने वाला जो है वो खुद समझे कि ये काला किसने कहा और दूसरा काला जो है वो किसने कहा, वो फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स से पता चलता है कि ये वाला जुमला किस किसकी मुंह से निकला है और ये वाला जुमला किसके मुंह से निकला है। फाइल बताया नहीं जा रहा होता, ठीक है, कि इसने कहा फिर उसने कहा फिर उसने कहा फिर उसने कहा, जहां पर ऑब्वियस होता है बताने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पे अल्लाह ताला जो है वो अपने कुरान में बहुत ही यानी स्पेयरिंगली अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कम कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर काला जो है वो इनको जो जवाब दिया जा रहा है कि इन लबिस्तुम, नहीं रहे तुम इल्ला कलीलन, सिवाय बहुत कलील वक्त के लिए, लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, अगर तुम लोग इल्म रखने वाले होते, अगर तुम लोग जानते होते ना, तो तुम बहुत कलील रहे हो इस दुनिया की जिंदगी के अंदर, यानी डेढ़ दिन तो तुम लोग नहीं रहे हो, एक दिन या आधा दिन तो तुम लोग नहीं रहे हो, दिन तो तुम लोग रहे हो, कोई 10,000 दिन रहा है, कोई जो है वो 5,000 दिन रहा है, कोई जो है 20,000 दिन रहा है, ठीक है ना, लेकिन अब जिस जिंदगी से तुम फेस कर रहे हो ना, जिस जिंदगी को, इस जिंदगी के मुकाबले में वो जिंदगी कलील ही है, और यही बात तुम्हें उस जिंदगी में मौलवी लोग बताया करते थे, है ना भाई, रसूल तो हमारे जमाने में ना आए हैं ना आएंगे, 1400 साल से तो कोई रसूल आया नहीं और ना आइंदा कभी आएगा, है ना, खत्म नबूवत, ठीक है, तो हमें कौन बताता है भाई ये सारी बातें, भी छोटी सी जिंदगी है, बस सब्र करके गुजारा कर लो, शुक्र करके गुजारा कर लो, रसूल तो नहीं बताते, किताबें तो फिर लिखी हुई हैं, किताबें उनके अंदर मौजूद है, लेकिन किताबें बोलती तो नहीं है, ऑडियो बुक बना फिर आवाज भी आनी शुरू हो जाती है उस ऑडियो बुक के अंदर से, वरना कौन बताता है, रसूलों के रसूल बताते हैं, रसूलों के जो मैसेंजर्स हैं, जो कि उलमा होते हैं, मशाइख हक जो होते हैं, अहले हक, वो बताते रहते हैं, थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, ठीक है ना, दुनिया में जो है वो उनकी बात के ऊपर कान नहीं धरते, फिर वहां पर यही बात अल्लाह ताला रिपीट करेंगे, हाँ तुम लोग रहे हो बतन, लेकिन बहुत थोड़ी सी देर के लिए। अफहसिबतुम, बस क्या तुम लोगों ने गुमान किया हुआ था, हिसाब अपने जहन में एक, एक, एक गुमान किया हुआ था, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, कि हमने तुम्हें तख्लीक किया है एवी में, है ना, पंजाबी में और हमारे यहाँ भी कराची वराची में बोलते हैं, एवी में तुम्हें तख्लीक किया हुआ है ना, अबसा बेकार में तख्लीक किया हुआ है हमने तुम्हें, ठीक है ना, बस क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हें हमने भेजा है दुनिया के अंदर, टीवी ड्रामे देखने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है, या गप्पे लगाने के लिए दुनिया में भेजा है, इसलिए तुमने तुम्हें हमने तख्लीक किया था। वह अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊं, और यह के यानी तुमने गुमान किया हुआ है कि अफहसिबतुम अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊं, कि तुम हमारे पास वापस नहीं लौटाए जाओगे, क्या मतलब वापस लौटाने का मतलब, शायद आपकी क्लास में तो बात नहीं हुई, रमजान के दौरान बात हुई थी या खवातीन की क्लास में बात हुई थी, ला तुरजाऊन का मतलब क्या, ला तुरजाऊन का तुरजाऊन का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला के पास लौटोगे फिर अल्लाह ताला तुम्हारे सामने रेड कारपेट बिछाएंगे और फिर तुम्हें जो है ना वो फरिश्तों के झुरमट में फूलों की पत्तियां निछावर करके फिर तुम्हें नेक्स्ट एक्सटेसी वाली जगह के ऊपर पहुंचाया जाएगा, नहीं, अल्लाह ताला के पास लौटने का मतलब ये नहीं,
ठीक है ना, कि रेड कारपेट वेलकम मिलेगी और उसके बाद फिर मजे ही मजे। नहीं, अल्लाह ताला की तरफ लौटने का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसका मतलब ये होता है हिसाब और किताब, ठीक है, क्वेश्चनिंग, ग्रिलिंग, ग्रिल करना जिसको कहते हैं। तो काफिर किस बात के इनकारी थे? काफिर हकीकत में अगर आप डेप्थ में जाए ना मसले की, तो काफिर आखिरत के दिन के मुनकर नहीं थे। हालांकि हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, और यही बात जो है वो होती भी है आम आम बोलचाल के अंदर, कि काफिर जो है ना वो आखिरत का मुनकर है। नहीं, काफिर आखिरत का मुनकर से मुराद क्या है? आखिरत के मुनकर से मुराद ये नहीं है कि जी बस वो दोबारा उठाए जाने के मुनकर हैं। नहीं जी, दोबारा उठाए जाने के वो मुनकर नहीं थे। नहीं, वो कहते थे हाँ अगर हम उठाए गए तो हमारे साथ तो और भी अच्छा मामला होने वाला है, जिस दुनिया में जितना अच्छा मामला किया है ना उससे भी ज्यादा अच्छा मामला होगा वहां पर, ठीक है ना। लेकिन नबी क्या कहते थे? नबी कहते थे नहीं, तुम जब उठाए जाओगे ना तो तुम्हें ग्रिल किया जाएगा। तो काफिर किस बात का इनकार करते थे? काफिर असल में इस ग्रिलिंग का इनकार करते थे, ग्रिलिंग का इनकार करते। ग्रिलिंग का मतलब समझते हैं ना सर? यानी अच्छी तरीके से रगड़ा दिया जाना और सवाल किया जाना, क्या करके आए हो, क्या लेकर आए हो, इसके वो मुनकर थे, ठीक है ना। अब अगर ये बात हम हमारे समझ में आ गई कि काफिर ग्रिलिंग के मुनकर थे, काफिर रेड कारपेट वेलकम के मुनकर नहीं थे, तो अब अगर हमारे सामने ये उसूल आ गया, तो इस उसूल को अब हम अपने ऊपर, क्योंकि कुरान जो है वो हमारी हिदायत के लिए है ना, कुरान किस्से कहानियों की दुकान वो किताब तो नहीं है कि हमें कहानियां बताई जा रही हैं कि जी उधर ये कहानी हो गई, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, जैसे हमें कहानी की किताब में पढ़ते हैं, उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, उसने ये कहा, नहीं, कहानी की किताब तो नहीं पढ़ रहे हम ना यहाँ पर, हम तो किताब हिदायत पढ़ रहे हैं। तो हमारी हिदायत इसमें क्या है भाई? हमारी हिदायत इसमें यही है ना कि अगर हम भी यही समझते हैं कि मरने के बाद जो उठाए जाएंगे तो रेड कार्पेट वेलकम मिलेगी हमें, ठीक है ना, और फरिश्तों के झुरमट में गुलाब की पत्तियों के निछावर होने के साथ साथ हमें जन्नत में एंट्री दी जाएगी, तो हम में और काफरों में कोई फर्क नहीं है। हमारी इस सोच में, मैंने टेक माय वर्ड्स बैक, हमारी इस सोच में और काफिर की सोच में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो भाई सोच तो क्या है ईमान वाले की? हिसाब किताब वाली सोच है, और काफिर की इस हिसाब किताब की इनकारी वाली सोच है। तो ये जो है ना कि तुम इस दुनिया में जो है वो जो चाहो करते फिरो, और फिर जो है वो हमारे पास तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तो अगर हमारा ये एटीट्यूड है तो फिर हमें इसको जल्द से जल्द, फौरन से पेशतर बदल लेने की जरूरत है कि नहीं, हमें यहाँ पर तमाशे करने के लिए नहीं भेजा गया है, हमें अपने आप को ठीक करने के लिए भेजा गया है। खुलासे से तफसील शुरू कर लेते हैं, किसी को कोई सवाल है तो लिख करके यहाँ पे बात कर लो, पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं आयात की मुख्तसर तफसीर जो कि हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बयान कुरान से हजरत यहाँ पर नकल करते हैं, तो उसमें फरमाते हैं कि फैजा नुफ़िखा फिस्सूर, है ना, फिर जब कयामत का रोज होगा और सूर फूका जाएगा, तो ऐसी ये ब्रैकेट्स के अंदर तफसीर होती है, बैनुल कौसैन तफसीर होती है, खुलासा मुख्तसर तफसीर, और अंडरलाइन जो होता है वो तर्जुमा होता है। तो बयानुल कुरान में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी स्वरूप के अंदर, इसी तरीके के अंदर पूरी तफसीर लिखी है। तो फरमाया कि फिर जब कयामत का जोर रोज होगा और सूर फूका जाएगा, तो ऐसी हौल व हैबत में गिरफ्तार होंगे कि उनमें जो बाहमी रिश्ते नाते थे, अंसाबा, जो बाहिमी नसब वाले रिश्ते थे, उस रोज वो भी गोया ना रहेंगे, गोया ना रहेंगे, ठीक है, मतलब रहेंगे लेकिन एज इफ दे डोंट एग्जिस्ट, यानी कोई किसी की हमदर्दी ना करेगा, जैसे अजनबी अजनबी होते हैं, है ना, तो आप किसी से पूछते यूजली नहीं है कि भाई आप कैसी गुजरी है आपकी, अजनबी एक दूसरे से, और खासतौर पर जब अपनी अपनी पड़ी हुई हो तो फिर कोई नहीं पूछता किसी दूसरे से, और ना कोई किसी को पूछेगा, वला यतसाअलून, कोई किसी को पूछेगा नहीं कि भाई तुम किस हालत में हो, गर्ज ना रिश्ता नाता काम आएगा, ना दोस्ती और तारुफ। तो उस दिन क्या चीज काम आएगी? बस वहां काम की चीज एक ईमान होगा, जिसकी आम शनाख्त के लिए
कि सब पर जाहिर हो जाए, एक तराजू खड़ी की जाएगी। ठीक है, यानी अब इसमें बहुत सारी तफसील है कि एक तराजू खड़ी की जाएगी जिसमें कि सबको तोला जाएगा एक एक करके, यानी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ह्यूमैनिटी, और फिर जिन्हों का भी तो होगा हिसाब किताब। ठीक है, वो तो पता नहीं, और भी शायद जिलियंस एंड ट्रिलियंस, तो एक तराजू पे सबका हिसाब, तो फिर वन आफ्टर द अदर लिनियर मोड में होगा फिर। या ये कि एक और तफसीर ये भी है कि हर बंदे के लिए एक अलग तराजू, तो मवाजीन का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो उसकी एक तफसीर मुफस्सरीन ने ये भी कि हर बंदे के लिए एक अलग तराजू कायम होगा। ठीक है, तो उस तराजू के ऊपर क्या होगा कि उससे एक तराजू खड़ी की जाएगी और इससे आमाल व अकायद का वजन होगा। ठीक है, बस जिस शख्स का पल्ला ईमान का भारी होगा यानी वो मोमिन होगा। अच्छा, अब यहां पर बता रहे हैं कि इसके ऊपर क्या चीज तोली जाएगी, आमाल व अकायद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हजरत ने जो है ना इसको ज्यादा तफसील से बयान नहीं किया, दीगर मुकामात के ऊपर जहां पे इस तरह की बातें आई हैं तो वहां पर हदीस अहदीस से जो है वो तफसील भी लिखी है, आप ऐसे अक्सर जो है वो पहले भी सुन चुके हैं। तो यहां पर जो वजन हो रहा है तो इस वजन में सबसे पहले एक टाइप का वजन होगा, यानी दो दफा वजन होंगे। पहली दफा जो है ना वो वजन किस चीज का होगा, अकायद का वजन होगा। अकायद का वजन, अकायद क्या चीज होते हैं, ईमान, ईमान होता है ना भाई, ईमान सबको पता है कि ईमान क्या चीज होती है, अल्लाह पर ईमान लाना, आमन तो बिल्लाहि व रसूलिही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिरी व कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला व बअस बादल मौत। ठीक है, ये सात चीजें हो गई। तो ये जो चीजें हैं ना जो के मिल करके ईमान बनता है, तो ये चीजें जो है ना ये अकायद है, यानी ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स अकायद कहलाते हैं। इसको रमजान मुबारक के दौरान इसी तरह की बात हुई थी तो अल्लाह ने एक अजीब उसके लिए मिसाल डाली जो कि कंप्यूटर वाले लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, वैसे तो एक आम इस्तेमाल के हद तक ही ये बात है, यानी जो आम कंप्यूटर यूजर्स होते हैं वो भी अब इन बातों को समझते हैं। क्या कि आप एक जिप फाइल बनाते हैं, है ना, एक 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 जिप फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फाइलें होती हैं। ठीक है ना, तो जिप फाइल जो है ना वो गोया के ईमान है, और उसके अंदर जो अंदर फाइल्स मौजूद है ना वो अकायद है। ठीक है, तो अकायद मिल करके फिर ईमान बनते हैं, और इसका ये मामला होता है कि अंदर जो फाइल्स है ना उनमें से कोई एक फाइल भी अगर करप्ट हो गई तो पूरी जिप फाइल करप्ट है ना, अगर एक फाइल भी करप्ट हो गई ना तो ऐसा नहीं होगा कि बस उस एक फाइल को आप अलग कर सकते हो, नहीं, बल्कि उस एक करप्शन की वजह से पूरी की पूरी जिप फाइल ही करप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ईमान का ये मामला है कि एक अकीदा भी, जो बुनियादी अकायद में से जो अकीदे हैं उनमें से एक भी खराब हुआ ना पूरा ईमान ही खराब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज तोली जाएगी, ईमान तोला जाएगा, यानी यानी अकायद तोला जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसमें जो पास हो गया, क्या मतलब कि उसका जो ईमान का पलड़ा था ना वो भारी हुआ, और दूसरा पलड़ा कुफर का पलड़ा होगा, उस कुफर के पलड़े में क्या चीज होगी, उसके अंदर वो कुफरिया आमाल नहीं होंगे, अभी आमाल के वजन ही नहीं हो रहा, अभी तो अकीदे का वजन हो रहा है, तो चूंकि उस तरफ तो कुछ है ही नहीं, ईमान वाले का तराजू का जो कुफर का पलड़ा है उसमें कुछ भी नहीं है, उधर क्या है, हवा, यानी वैक्यूम है, उधर जीरो पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, है ना, और इधर क्या पड़ा हुआ है, इधर वन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, वन ऑफ ईमान, अब ये हो गया पास। ठीक है, यानी ईमान वाला है, पास हो गया, अब जो है ना इसको नेक्स्ट स्टेज में पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, वो होगी आमाल के तराजू वाली स्टेज, है ना, अब ईमान वाला तो है, अब जो है वो नेकी के आमाल और बुराई के आमाल इन दोनों का वजन होगा, और फिर वहां पर फिर आगे अगला मामला चल रहा है। ठीक, तो जो काफिर होगा उसका जो पहला वजन हुआ उसमें क्या हुआ, ईमान के पलड़े में जीरो पड़ा हुआ है, और अकायद के पलड़े में यानी और कुफर के पलड़े के अंदर या तो शिर्क पड़ा हुआ, या तो यहूदियत पड़ी हुई है, या वहां पे ईसाइयत पड़ी हुई है, या वहां पे बुद्ध मत पड़ा हुआ है, या हिंदू मत पड़ा हुआ है, या जो है वो कादियानियत पड़ी हुई है, राइट, या परवेजियत पड़ी हुई है वहां पर, या जो है वो इस किस्म की कोई और मुल्हिदाना अकायद पड़े हुए हैं, तो अब ये शख्स जो है वो पहले मेजर के अंदर
फेल हो गया। ठीक है, तो अकाइद का वजन इस तरह से हो गया। और फिर अब इसका जो है ना, अब दोबारा वजन वजन कुछ ठीक है ना, नेक्स्ट आगे जाके, क्योंकि अब तो ये ईमान के ही मरहले के ऊपर फेल हो गया ना, अब आगे जाकर इसके अमाल का वजन नहीं होगा। अब इसके अमाल की बुनियाद पर फिर, यानी अब वजन करने की जरूरत नहीं है, अब वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है कि उसने क्या क्या अमाल किए थे, उसके हिसाब से उसको जहन्नुम के अंदर अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, बगैर वजन किए हुए अलॉटमेंट हो जाएगी उसकी। ईमान वाले का जो है फिर अमाल का वजन होगा, तो उसके हिसाब से फिर या तो वो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नुम के अंदर, जो सबसे ऊंचा वाला ऊपर वाला दर्जा होगा, तो उसके अंदर फिर अलॉटमेंट उसकी अमाल के हिसाब से होगी। तो ऐसे लोग जिनका जिस यानी सो जिस शख्स का पल्ला ईमान का भारी होगा, यानी वो मोमिन होगा, तो ऐसे लोग कामयाब यानी निजात पाने वाले होंगे। चाहे वो यानी इमीडिएटली निजात पाने वाले हो गए या इवेंचुअली निजात पाने वाले हो गए, ठीक है ना, लेकिन निजात उन्होंने पानी है, क्योंकि ईमान वाले वजन के अंदर ये पास हो गए। ठीक है, यानी खुलूद फिल जहन्नुम से बच गए, हमेशा हमेशा जहन्नुम का फैसला इनके लिए नहीं है, इन्होंने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है, यानी आज और कल में कितना फर्क है, वहां पर उस जहान में, उस आलम में आज और कल के दरमियान कितना फर्क है, 80,000 दिन का। यानी आज अगर निजात पा गए तो फिर तो जबरदस्त मजे ही मजे जन्नत में चले गए, और अगर आज नहीं निजात पाए ना, तो अब नेक्स्ट निजात कब होगी, 80 साल, 80,000 नहीं, 80 साल के बाद। ठीक है, एक हिकब जो है वो 80 साल का होता है, 80 साल के लिए जहन्नुम में रहेंगे, फिर उसके बाद निजात होगी। ये हो गया कल, कल निजात पाने का ये मतलब है। परसों निजात पाने का मतलब क्या, 160 साल के बाद निजात होगी जहन्नुम से। ठीक है ना, तो भाई हमारे पास तो बस एक ही ऑप्शन है, और हमने इसी एक ऑप्शन के लिए जान मार देनी है, राइट, जान मार देनी है, सब कुछ मार देना है अपना, के जहन्नुम में हमने जाना ही नहीं है ना, वी कैन नॉट टेक दैट एज एन ऑप्शन, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल हमारे लिए। अब ये हम अल्लाह को तो नहीं बोल सके, अल्लाह इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना भाई, नहीं, अल्लाह के सामने तो आजिजी करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, तौबा करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे हमारे गुनाहों को और हमें डायरेक्ट जहन्नम में भेज देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर रहम का बात करें हमारे ऊपर। बहरहाल, तो ये हो जाएगा निजात पाने का की तफसील, ये हो गई निजात पाने की तफसील। अच्छा, और मजकूर हौल व हैबत के हालात, यानी ये जो ऐसे हैबतनाक हालात जिक्र किए गए ना यहाँ पर, कि ना किसी का रिश्ता काम आए, ना दोस्ती, और ना कोई किसी को पूछे कि किस हाल में हो, ये उन मोमिनीन को पेश ना आएंगे जो कि निजात पाने वाले मोमिनीन हैं। लिकौली ताला ला यहज़ुनुहुमुल फज़ुल अकबर। ठीक है, यानी अब यहां पर तफसीर, क्योंकि ये तो भाई खुलासे तफसीर हो रही है ना, खुलासे तफसीर के बाद फिर तो तफसीली तफसीर भी तो होती है, ठीक है ना, दूसरी आयात को सामने रख करके, दूसरी अहादीस को सामने रख करके, जो 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 तफसील इस तफसीर की वो क्या है, कि जो कामिल मोमिन होंगे, यानी आज जन्नत में जाने वाले लोग, तो उनका क्या मामला होगा, ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर। ये जो एक हौलनाक से फजा, यानी फजा से यहाँ पे मुराद जो वो उस दिन की जो है ना जजा फजा, हौलनाकी जो है ना, बड़ी हौलनाकी, ला यहज़ुनुहुम, ये उनको हुजुन में, फिक्र में, गम में मुब्तला नहीं करेगी। ठीक है ना, यानी सब कुछ हो रहा होगा लेकिन ये उससे जुदा होंगे, किधर होंगे, ये अर्श के साए में, राइट, VVIP लाउंज में होंगे, है ना। अब बाहर जो है लोग गर्मी में पड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, VIP लाउंज वाले माशाल्लाह, है ना भाई, उनको सर्विंग्स भी हो रही हैं, उनके लिए जो है वो लेटने के लिए बड़ी जबरदस्त किस्म की सीटें भी मौजूद हैं, और है एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है, और यानी कंट्रोल टेम्परेचर में बैठे हुए आराम से, ठीक है ना। और बाहर क्या हो रहा है, बाहर जो है वो तमाशे हो रहे हैं, हॉल हैबत ये सब कुछ। ला यहज़ुनुहुमुल फज़ाउल अकबर, ये जो बड़ी फजा है ना, ये उनको परेशान नहीं करेगी। आगे ये आयत बड़ी जबरदस्त है, इस आजिज ने अल्लाह की तौफीक से उसको लिख भी दिया आपके लिए।
आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यहज़ुनुहुमुल फज़ुल अकबर के बाद वततलक्ताहुमुल मलाइका, ठीक है ना, और मलाइका जो है ना वो उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे क्या कहेंगे, हाजा यौमुकुम। क्या ये जो लफ्ज था ना, इस लफ्ज की वजह से इस फकीर से रहा नहीं गया, मैंने कहा ये तो आपके सामने बोलना ही है, वैसे भी क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है, क्या कहेंगे, बड़े जबरदस्त अल्फाज, हाजा यौमुकुम, दिस इज योर डे, दिस इज योर डे, ये तुम्हारा दिन है, ठीक है ना, दिस इज योर स्पेशल डे, यानी इससे पहले जो वाले दिन थे ना वो तो तुम्हारे दुश्मनों, है ना, तुम्हारे दुश्मन भी उसके अंदर मजे कर रहे थे, वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे सामने हंसते भी थे, मजाक भी करते रहते थे, तुम्हारा मजाक उड़ाते रहते थे, ये देखो कैसा बेवकूफ किस्म का इंसान है, ही डज नॉट नो हाउ टू दुनिया के साथ चलना, इसको नहीं आता, बेवकूफ किस्म का है ना, वही जिसके पास तो कपड़े ही, और कोई कोई कपड़े ही उसको पहनने नहीं आते, तो बस वही जो है वो 1400 साल पुराने जो है वो कपड़े, उस किस्म के लिबास पहनता रहता है, उसी किस्म के जो है वो काम करता रहता है ना, जमाने के साथ चलना, शाना बशाना चलना, दौड़ में आगे बढ़ जाना जमाने की, ये तो कुछ इसको नहीं आता, तो दुनिया में तो तुम सुनते रहते थे, सबर करते रहते थे, अपने दीन के ऊपर तुम कायम रहने की कोशिश करते रहते थे, हमसे मांगते रहते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे, ठीक है ना, तो वो दुनिया के अंदर तो हाँ कभी तुम्हें जो है वो कुछ कामयाबी भी हो जाती थी, कभी कभी थोड़ी बहुत जो है वो योम बदर के अंदर कामयाबी हो गई, है ना, और खंदक के अंदर तुम्हें कामयाबी हो गई, और कभी तुम्हें नाकामी भी होती रहती थी, तो वहां पर तो बैन बैन का मामला चलता रहता था, लेकिन ये जो दिन है ना, अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, दिस इज योर डे, यानी इस दिन ये किसी और का दिन नहीं है, दिस इज ओनली योर डे, अल्लाह अकबर, कलम छोटी जो हमारी सबसे हैं उनको लेकर के गए हुए थे हस्पताल, तो उनकी एक अपॉइंटमेंट थी, वो बस अलहमदुल्ला बाकी सब तो ठीक है, बच्चा है चेकअप वगैरह, क्योंकि बड़े अर्सा हो गया डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, बच्चा होता है तो चेक कर लेना चाहिए कि कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या वेट वगैरह सही है, क्या सही है, तो उनको जो है ना वो डॉक्टर से ये सब भी हुआ, फिर उन्होंने कहा भी चलो कुछ टेस्ट वेस्ट भी कर लेते हैं ताकि पता लग जाए सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनका ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा दिया, फिर उसके बाद जो है ना वो उनके कान छिदवाने थे, पता नहीं मैं मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो उनके कान छिदवाने थे, है ना, 4.5 साल की हो गई है, तो हम लोग जो है वो यानी न्यू बॉर्न के वक्त कान नहीं छिदवाते, तो कल उनके कान भी छिदवाने थे, ठीक है, तो माशाल्लाह उनके कान भी छिदवा दिए, टॉप्स पहन लिए, तो इस आज ने ना फिर जब सब कामों से फारिग हुए ना तो उनको भी यही कहा, आज तो आपका दिन है, यानी आज तो आप जो है ना वो फोकस में थी, सारा काम ही आपके लिए हो रहा था, ठीक है, और अल्लाह अकबर, आज वही बात जो है वो अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद के भी वास्ते से सुनवा दी, हाजा यौमुकुम, दिस इज योर डे, ये तो तुम्हारा दिन है, ठीक है, अल्लज़ी कुंतुम तुअदून, जिससे के तुम जिसका के तुमसे वादा किया जाता था, ठीक है भाई, तो हम तो उस दिन के लिए जीते हैं, या हमें जीना चाहिए उस दिन के लिए जो कि हमारा दिन होगा, लेकिन उसका उसकी प्राइस क्या है कि इस दिन जो है ना अपनी गिरफ्त को, है ना, अपनी जो हमने गिरफ्त बनाने की कोशिश की हुई होती है ना अपनी जिंदगी के ऊपर, आई वॉन्ट माई वे, राइट, ईदर माई वे और द हाईवे, वो भी एक मुहावरा है अंग्रेजी का, या तो मेरा रास्ता इख्तियार करो या जाओ बाहर जाओ सड़क पे जाओ, माई वे और द हाईवे, ठीक है ना, हम इस दुनिया के अंदर ना माई वे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं, मेरी मानी जाए, मैं माई सेल्फ आई, मेरा तरीका, मेरी मर्जी, ठीक है ना, और वो कभी हो तो पाती नहीं है, है ना, बस धोखा ही धोखा लगा होता है, जिन लोगों की मर्जी पूरी होती है थोड़ी बहुत उनको भी धोखा लग रहा होता है, और बाकी किसी की थोड़ी बहुत भी पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन वही लगे हुए हैं अपनी जन्नत इसी दुनिया में बनाने के लिए, है ना, तो हमें ये आयत याद रखनी चाहिए कि उस दिन जो है ना ततलक्काहुमुल मलाइका, हमारे लिए क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए कि मलाइका हमें मुलाकात करें और वो उस दिन कहें हादा यौमुकुम, ये तुम्हारा दिन है ना, तो ईमान वाले के लिए ये बिल्कुल जेबा नहीं है कि वो अपनी इस मुख्तसर जिंदगी को बर्बाद करे इस चक्कर में कि वो अपना दिन इस दुनिया में बनाने की कोशिश करता रहे, मेरा दिन इस दुनिया में बन जाए, ये नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ना किसी का बना, ना किसी का बन सकता है। सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला में बात की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।